नमस्कार। कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड हेलो आकर्षिता। आकर्षिता, टुडे इज द 7th डे ऑफ नवरात्रि, द डे ऑफ माँ कालरात्रि, द मोस्ट फियर्स फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, द डिस्ट्रॉयर ऑफ डार्कनेस, फियर एंड ईविल, ऑल्सो कॉल्ड शुभंकरी बिकॉज शी ऑलवेज ब्रिंग्स ऑस्पिशियस रिजल्ट्स।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
This Navratri, let's embrace the spirit of the festival to pray for peace, urging for an end to conflicts and the strengthening of compassion worldwide. Let the festival be used as a reminder to turn away from destruction and embrace lasting peace in thoughts, words and actions towards all beings. Let's pray for cessation of wars, seeking strength for humanity to overcome challenges. With this positive note, let me welcome you all to today's fresh new episode of Parikrama. And starting with all the news making headlines at this hour of the day.
सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर चर्चा के लिए आज शाम सर्वदलीय बैठक बुलाई।
Government says there has been no increase in rates of petrol and diesel. Center says no change in existing LPG refill booking timelines.
अमेरिका ने ईरान को संघर्ष समाप्त करने के लिए 15 सूत्री योजना का प्रस्ताव भेजा। ईरान का कई खाड़ी देशों पर हमला जारी।
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन asserts गवर्नमेंट empowering MSMEs, farmers and cooperatives to boost jobs and overall development.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि कोविड के बाद 1000 से अधिक रेलगाड़ियां शुरू की गई।
Bangladesh observing genocide day to remember victims of Pakistan's brutal military crackdown on unarmed people.
और पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल आज शाम रायपुर में शुरू होंगे।
And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about One Station, One Product. Have you noticed something new the last time you visited a railway station?
और क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्थानीय रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय संस्कृति और शिल्प का केंद्र बन सकता है? तो भारतीय रेलवे के पास इसका एक रोमांचक जवाब है। भारतीय रेलवे की एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और रेलवे स्टेशनों को स्वदेशी उत्पादों की बिक्री केंद्र के रूप में विकसित करना है। और अनुजा, अक्सर हम देखते हैं जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और हम घर से जा रहे होते हैं तो हमें बहुत एक घर की याद आती है, और अगर अचानक से हमें अपने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा मिल जाए जो हम अपनी यादों में लेकर के एक तरीके से उसको लेकर के जा सकते हैं, जैसे बनारस है, बनारस में वो लकड़ी की जो है ढेर सारी लकड़ी जो होती है उस पे वो पेंटिंग्स करते हैं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, तो हमारा जो रेलवे है वो इस क्षेत्र में काम कर रहा है जिससे स्थानीय कारीगरों को जो है एक रोजगार भी मिल रहा है और एक स्थानीय संस्कृति को पहचान भी मिल रही है और एक हमें अपनापन भी मिल रहा है।
राइट, सो इंडियन रेलवे इज क्वाइटली ट्रांसफॉर्मिंग आवर ट्रैवल एक्सपीरियंस दीज डेज। अक्रॉस स्टेशन इन इंडिया लोकल क्राफ्ट्समैनशिप इज फाइंडिंग अ स्पेशल प्लेस इन आवर डेली जर्नी। दिस इज ऑल thanks to the One Station, One Product or the OSOP initiative introduced in the Union Budget 2022-23.
और जरा कल्पना कीजिए कि आप ट्रेन से उतरते हैं और वहाँ आपको हाथ से बनी चीजों की रंग बिरंगी प्रदर्शनी दिखाई देती है। बारीकी से बुने हुए कपड़ों से लेकर अनोखी क्षेत्रीय हस्तकलाओं तक, ये सिर्फ यादगार चीजें ही नहीं है बल्कि ये स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और अपनी आजीविका को स्थायी बनाने का एक प्रमुख साधन भी है।
Exactly. The One Station, One Product Initiative creates dedicated retail spaces right at the stations, offering a platform for indigenous products while celebrating India's rich regional diversity. Every item tells a story of skill, tradition and community pride.
और ये काफी आगे भी बढ़ा है। 19 जनवरी 2026 तक 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर लगभग 2326 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट मौजूद हैं, जो स्थानीय उत्पादकों को लाखों यात्रियों से जोड़ते हैं और 1.32 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाते हैं।
द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव इज टर्निंग स्टेशन इनटू एक्सेसिबल मार्केट प्लेसेस फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। आफ्टर अ सक्सेसफुल 15-day पायलट एट 19 stations, this initiative is now rolling out nationwide with stalls provided on a rotational basis at very nominal fees.
और ये सिर्फ खरीदारी करने के बारे में नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलने के बारे में भी है। रेलवे डिवीजन राज्य एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों और MSME के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पूरे भारत के कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सही मौका मिले और इस तरह से हम अपनी संस्कृति को भी सहेज कर रखें।
राइट आकर्षिता, ईच वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल रिफ्लेक्ट्स द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इट्स रीजन। इमेजिन अ टेनकासी जंक्शन इन तमिलनाडु सीइंग डेलिकेटली क्राफ्टेड केन प्रोडक्ट्स दैट एको जनरेशंस ऑफ इंडिजिनस स्किल, और एट पटना रेलवे स्टेशन वेयर द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स कम्स अलाइव, ऑफरिंग आर्टिस्ट्स अ स्टेज टू रीच द ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कारीगरों, बुनकरों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, खासतौर पर महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों को प्राथमिकता देता है। औपचारिक बाजारों तक सीमित पहुंच वाले लोगों को लक्ष्य बनाकर और उन्हें आउटरीच और संस्थागत समन्वय के जरिए सहायता देकर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जमीनी स्तर के समुदायों को अपने पारंपरिक रोजगार को बनाए रखते हुए ग्राहकों के एक बड़ी वर्ग से जुड़ने में सक्षम बनाता है।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स offer travelers a chance to purchase authentic local products as souvenirs, reflecting the unique cultural and economic identity of each state while also supporting grassroots livelihoods. We take you on a journey across India's railway stations where something truly inspiring is happening. At Balangir railway station in Odisha, a small toy stall is making a big difference.
Aur Pashchim Bengal ke Asansol railway station par platform number 4 par वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक बूथ लगा है, जहां हथकरघा से बने बैग, हस्तशिल्प कलाकृतियां और कालीन प्रदर्शित किए गए हैं। ये चीजें वहां इंतजार कर रहे यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जब यात्री इन चीजों को देखते हैं और खरीदते हैं तो वो अपने साथ केवल यादगार तोहफे ही नहीं ले जाते बल्कि वे अपने साथ इस क्षेत्र की कारीगरी और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा एक ले जाते हैं अपने साथ। वो कहते नहीं कि हम अपने साथ अपने घर से ही कुछ लेके जाते हैं, और जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा इनिशिएटिव है कि वो भी हर स्टेट की चीजों से जुड़ सकते हैं।
एब्सोल्युटली। एंड हैव अ लुक एट द मोआ मार्केट कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन इन चेन्नई इन तमिलनाडु। अ स्टॉल शोकेस cotton handloom products that highlight the state's rich textile traditions. These stalls allow travelers to conveniently purchase authentic handloom items while supporting the local weavers there.
और पास ही इत्र की एक दुकान आगंतुकों को पारंपरिक सुगंधों से परिचित कराती है। ये व्यक्तिगत अनुभव को सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ती है और यात्रियों को पारंपरिक सुगंधों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है, साथ ही स्थानीय कारीगरों और उनकी कारीगरी को भी बढ़ावा देती है। दक्षिणी तट से लेकर पूर्वी क्षेत्र तक ये पहल स्थानीय कारीगरी को व्यापक दर्शकों से जोड़ने का काम लगातार करती है। और अनुजा, अगर देखें तो हमारे इतने ढेर सारे स्टेट्स के इतने ढेर सारे उत्पाद है। वी आर सो प्राउड ऑफ।
Of course, the OSOP initiative embodies the spirit of Vocal for Local by connecting grassroots producers with the national market. It's empowering local communities, strengthening entrepreneurship and giving travellers a chance to take home a piece of India's cultural heritage. And the impact doesn't stop in Odisha. Moving westward, the variety of products changes, but the essence remains the same. Artisans across the country are being empowered, their skills are getting preserved and local traditions are being celebrated.
अब हम आपको जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन ले चलते हैं, जहां राजस्थान की रंग पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ने यहां एक आउटलेट खोला है जो सांगानेरी प्रिंट टेक्सटाइल की जीवंत विरासत को फिर से जीवित करता है। हर कपड़ा हुनर, विरासत और समर्पण की एक कहानी कहता है।
Of course, the growing network of One Station, One Product outlets illustrates how public infrastructure can support inclusive growth. By integrating local products into everyday transit spaces, the initiative strengthens grassroots entrepreneurship while preserving the traditional skills. More importantly, it transforms routine journeys into meaningful encounters.
यात्री उन उत्पादों के पीछे की कहानियों से जुड़ते हैं जिन्हें वे खरीदते हैं, जबकि कारीगरों को पहचान और आर्थिक स्थिरता मिलती है। इस लेन देन में रेलवे स्टेशन ऐसे स्थानों में बदल जाते हैं जहां संस्कृति, व्यापार और समुदाय का संगम होता है।
These stalls don't just sell products, they tell stories of tradition, culture and the people behind the craft. Every item is a piece of regional heritage waiting to be discovered. So next time you are waiting for your train, take a moment to explore these little treasures. You're not just buying a product, you are supporting artisans and taking home a piece of India's heritage.
दिल्ली के हलचल भरे प्लेटफॉर्म से लेकर केरल के खूबसूरत स्टेशनों तक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट हर सफर को स्थानीय कारीगरों के उत्सव में बदल रहा है। अपनी आंखें खुली रखें और हो सकता है कि आपके अगले सफर की यादगार कोई ऐसी चीज हो जो सचमुच हाथ से बनी हो। भारतीय रेल सिर्फ शहरों को ही नहीं जोड़ रही, बल्कि ये लोगों को भी जोड़ रही, उनकी संस्कृतियों को भी जोड़ रही और हमारे अपनेपन को भी एक दूसरे के साथ साझा कर रही है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
The curtains for the International Film Festival Delhi 2026 rises today at Bharat Mandapam in the national capital. The week-long festival will showcase over 130 films from across the world, marking a major addition to India's global cinema calendar. We have more on this from our correspondent.
Running from today until the 31st of this month, the International Film Festival Delhi will present over 130 screenings from 47 countries. Curated from more than 2,000 submissions across 101 nations, the lineup reflects the festival's scale and global resonance. The festival opens with Shurat, an Oscar-nominated road film by acclaimed filmmaker Oliver Lash, setting a strong international tone. It will conclude with Amoeba, a striking debut by Singaporean director Tan Siew, underscoring a commitment to fresh and diverse cinematic voices. The event will also witness the presence of noted personalities from Indian and international cinema, including Vicky Kaushal, Hema Malini, Bhumi Pednekar, Rana Daggubati, Madhur Bhandarkar and Subhash Ghai. With its rich global lineup and vibrant industry participation, the film festival seeks to emerge as a dynamic platform for cinematic dialogue, creativity and collaboration in the years ahead. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
An interesting information, Akashwani will broadcast full version of the national song Vande Mataram from tomorrow to open its morning broadcast. It has been a tradition for Akashwani stations to open their morning broadcast with its iconic signature tune, followed by the two stanza version of Vande Mataram since independence. The Ministry of Information and Broadcasting said that in view of the Ministry of Home Affairs' recent guidelines on the national song containing six stanzas, all stations of Akashwani will start broadcasting the full version of the national song from tomorrow. Moving on, Morocco, a North African country bordering the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea, is exploring the possibility of direct flight connectivity with India to promote tourism. Over 54,000 visitors from India visited Morocco last year. At a media roundtable held in Chennai, Jamal Kilito, the country manager of Moroccan National Tourism Office, said that the number of tourists is likely to touch 1 lakh this year. More from our correspondent.
Morocco is also called the Kingdom of Life and is a favorite destination for tourists around the world. It is characterized by a specific quality of light that illuminates its landscapes, particularly during golden hour, reflecting off the Atlantic coast, the desert sands, and the vibrant architecture. Travel between India and Morocco relies on connecting flights via West Asian or European hubs. At least 10 weddings are held in Morocco, and Bollywood movies are shot in Morocco as the government offers subsidies. Among the major cities to visit is Marrakesh, the economic capital, Casablanca, Rabat, the capital city with a mix of modern infrastructure and historic sites like Kasba of the Udayas and coastal views. Tangier, the coastal city, is with a blend of European and Moroccan influences. The multicultural country is also recognized as World Heritage by UNESCO. Joy, Akashvani News, reporting for Parikrama from Chennai.
भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना है, जिसका कार्य भारत के अंतिम छोर ग्रेट निकोबार यानी कैंपबेल में चल रहा है। इस परियोजना के पूरा हो जाने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ेगी, साथ ही मल्लका जल डमरू मध्य के पास विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता भी कम होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नागरिक और सैन्य उपयोग वाला हवाई अड्डा, विद्युत संयंत्र और आधुनिक टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। करीब 81,000 करोड़ रूपए की इस परियोजना का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक ताकत को बढ़ाना और मलक्का जल डमरू मध्य के पास अपनी स्थिति का लाभ उठाकर विदेशी बंदर गांवों पर निर्भरता कम करना है। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से अगले 30 वर्षों में पूरी की जाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से मैं तरन्नुम मोहम्मद।
The Ministry of Panchayati Raj constituted an expert committee on own source revenue of rural local bodies in 2022 to review the status of locally generated revenue of panchayats, and as per finding of this report, Goa has emerged as the top performing state in the country in terms of revenue generated by panchayats. More from our correspondent.
A report on assessment of own source revenue of rural local bodies highlights Goa's strong performance in rural local governance. According to the report, Goa ranks highest in the country in per capita own source revenue or OSR collected by panchayats. While the national average stands at around Rs. 59 per person annually, Goa's per capita OSR is reported to be as high as 1,635. It is noteworthy that OSR by states and UTs are merely average 6-7% of total revenues, but in case of Goa, it is 89%. The report notes that Goa's model of revenue generation is being considered a benchmark for other states to improve financial self-reliance at the panchayat level. The findings underline the state's efficiency in mobilizing local resources and strengthening grassroots governance. For Parikrama, Mahesh Sokade, Panji.
As temperatures rise and the political heat of the election season intensifies, Thiruvananthapuram finds a refreshing cultural respite amid the twin surge of summer warmth and campaign fervor. Akashvani's Swati Thirunal Music Festival arrives in Thiruvananthapuram, offering a soothing blend of melody and tradition to calm the senses. Let us hear more about the music festival organized by Akashvani Thiruvananthapuram. Over to our correspondent.
As the strains of classical melody fill the air, Kerala's rich musical heritage comes alive through the timeless compositions of Swati Thirunal Ramavarma, a 19th century ruler of Travancore and one of India's most celebrated composer kings. Swati Thirunal was a great patron of arts, literature, and education. A gifted musician, he composed hundreds of songs in multiple languages, and his verse continued to hold a central place in the classical music concerts, preserving a rich and enduring cultural legacy. Keeping this tradition alive, Akashvani organizes the Swati Thirunal Music Festival every year, a much-loved event among the classical music enthusiasts. This year's festival began on Tuesday with a Nagasaran concert by Ochira Sadashivan and his team. A Carnatic vocal concert by Ashwati Thirunal Ramavarma is scheduled for this evening, accompanied by noted artist S.R. Mahadeva Sharma on violin, Nanjil S. Arun on the mridangam, Perukav PL Sudhir on the Kadam and Tirunakara K.R. Radish on the Mukher Chang. The festival will conclude on Thursday with a concert by Dr. Anedi Dhanalakshmi. All performances feature compositions of Swati Tirunal and the concerts will be broadcasted by Akashvani in the month of May, bringing these timeless melodies to a wider audience. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल अनुजा से.
द फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स इज बिगिनिंग इन छत्तीसगढ़ टुडे. द कंपटीशन विल कंटिन्यू टू द 3rd ऑफ अप्रैल फीचरिंग इवेंट्स इन 7 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स. द इनॉग्रल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स विल बी फॉर्मली लॉन्च्ड इन रायपुर टुडे. यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया विल इनॉग्रेट द इवेंट. छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट इज टू प्रोवाइड अ नेशनल level platform to youth from tribal regions across the country, enabling them to gain recognition and opportunities for their sporting talent. And if we come to the business news of the day, benchmark domestic equity indices surged over 1.5% today, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The Sensex zoomed 1,205 points or 1.63% to close at 75,273, while the Nifty jumped 394 points to settle at 23,306.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
We remember the Gandhian and freedom fighter Usha Mehta, who was born on the 25th of March 1920 at Surat.
From a young age, she found herself to be an active participant in the fight against British rule. In 1928, at the age of 8, she took part in her first protest against the Simon Commission. As a young child, she would protest in front of liquor shops and secretly distribute various publications. During the salt satyagraha, she would bring seawater to her home and produce salt out of that.
In 1939, Usha Mehta completed her graduation from Wilson College, Bombay, and began to prepare to study law. However, with the announcement of the Quit India movement in 1942, she decided to halt her studies and join the freedom struggle.
In the 1942 Congress session, Usha Mehta was privy to the powerful speeches given by Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad and Sardar Vallabhbhai Patel. This gave her the impetus to organize a secret radio station and help deliver the Indian perspective to the remotest corners of the world.
On the 14th of August 1942, Dr. Usha, along with her associates, launched the first announcement of Congress Radio. In this show, she delivered the news bulletin in both English and Hindi. The show would commence with the song Hindustan Hamara and close with Vande Mataram. Despite the strict vigil maintained by the British authorities, her station fearlessly reported the atrocities committed by the British.
To remain underground, they needed to frequently change their positions so as to remain hidden from the British radar. During the Quit India movement, they had to change around 7 to 8 stations. On the 12th of November 1942, as they were hosting a show from Girgaon, the police arrested Usha Mehta along with her associates. She was sentenced to 4 years of rigorous imprisonment.
When she was released in 1946, she became the first political prisoner to be released in Bombay. When she was released, Dr. Usha said,
I came back from the jail happy and proud because I had the satisfaction of carrying Bapu's message, do or die, and having contributed my humble mite to the cause of freedom.
On the 11th of August 2000, Usha Mehta passed away at the age of 80. Her zeal and enthusiasm to fight for her country is a true inspiration. We salute the daughter of the soil.
We also remember freedom fighter Vasantrao Lakangauda Patil. V.L. Patil was born on the 25th of March 1922 in Belgaum district of Karnataka.
And today we also remember Ganesh Shankar Vidyarthi on his death anniversary. A fearless voice against injustice, he stood for truth, unity and humanity. Known for founding the Hindi weekly Pratap, he pioneered revolutionary journalism using his pen to fight British rule and champion the oppressed, which resulted in 5 imprisonments. He was an important figure in the non-cooperation movement and the freedom movement of India. The Ganesh Shankar Vidyarthi Memorial in Kanpur is named in his remembrance. Ganesh Chowk, a square, is named after him in the heart city of Gorakhpur, while Phoolbagh, earlier Queen's Park in Kanpur, is also called as Ganesh Vidyarthi Udyan.
आज भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा की पुण्यतिथि है. उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों में विशेष रूप से कार्य किया. उन्होंने सबसे पहले वर्ष 1948 में आई फिल्म मंदिर में बतौर कलाकार बाल कलाकार के रूप में काम किया और सूरज प्रकाश निर्देशित फिल्म जब जब फूल खिले वर्ष 1965 में प्रदर्शित हुई. इस फिल्म का एक गीत था एक था गुल और एक थी बुलबुल के द्वारा कही गई कहानी ने सिल्वर गोल्डन जुबली भी बनाई. आइए सुनते हैं ये गीत.
है ये कहानी बिल्कुल सच्ची. मेरे नाना कहते थे एक था गुल और एक थी बुलबुल बुलबुल कुछ.
And she received her first nomination for the Filmfare Award for Best Supporting Actress for the movie Bhabhi. And she had a very good role and a very memorable role in her movie Prem Rog.
तब जाकर तुम मिले आनंद. एक खबर सुनाने
आई. राकेश किसी शादी कर रहे हैं. Impossible. अगर यहाँ शादी हो सकती ना अभी तक तुम कुंवारी होती और ना मैं कुंवारा होता. ना तो यहाँ कोई मस्जिद है ना मंदिर है और ना कोर्ट है. यहाँ शादी का कोई चांस नहीं. हाँ तो मैं सोच सकता है शादी के वादे हो सकते हैं.
वादे नहीं आनंद. उन्होंने फैसला किया है कि बॉम्बे जाकर वो शादी कर लेंगे.
आज हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक निम्मी की पुण्यतिथि है. उनका असली नाम नवाब बानू था. बॉलीवुड की इस मासूम सी खूबसूरत अभिनेत्री का राज कपूर ने फिल्मी दुनिया से परिचय करवाया. हालांकि निम्मी की फिल्म शुरुआत सहायक अभिनेत्री के तौर पर राज कपूर और नरगिस अभिनीत फिल्म बरसात से हुई थी. बरसात फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाया और फिल्म के लोकप्रिय शीर्षक गीत बरसात में हमसे मिले तुम जिया बेकरार है सभी निम्मी पर फिल्माए गए थे.
बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम बरसात में. जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मुरे बाल माँ तेरा इंतजार है. ओ, सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम.
And moving on, we also pay tribute to Dr. Vasant Ranchod Govarikar, the noted scientist and also the man behind India monsoon model. One of his noteworthy contributions is the development of the first indigenous weather forecasting model for predicting monsoon precisely. This was operationalized under his leadership. Renowned Indian scientist and key space researcher recognized with the Padma Shri and Padma Bhushan for his pioneering contributions to solid propellant rocket motors, the India monsoon forecasting model and population studies. He, along with senior scientist Vikram Sarabhai, laid the foundation stone for India's space technology and space programs, culminating in many important milestones. India's first launch vehicle, SLV-3, made its triumphant success during Govarikar's tenure as the director of Vikram Sarabhai Space Center.
आज प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित मुकुल शिवपुत्रा का जन्मदिन है जो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं. वे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व के शिष्य हैं. उन्होंने 1975 में प्रतिष्ठित सवाई गंधर्व संगीत समारोह में अपनी पहली प्रस्तुति दी थी. मुकुल शिवपुत्रा को ख्याल भजन और ठुमरी गायन में महारत हासिल है.
बमना And today is also the birth anniversary of an actor who had a style of his own, humble yet assertive, straightforward but polite, and his warmth both on and off screen was hard to miss. Yes, I'm talking about Farooq Sheikh. Sheikh started his career in 1973 with the political film Garam Hawa. He played the role of a young student in the classic drama and established himself as a natural actor. And of course, who can forget his style in the movie Saath Saath?
तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया तुमको देखा
खत से साफ जाहिर होता है कि तुमने उसको ये बात तो बताई नहीं कि तुमने यहाँ आकर एक बर्मी औरत से शादी कर ली है और उससे तुम्हारे दो बच्चे भी हैं
ठीक है सर अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको
और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की नमस्कार, नमस्कार।